ये भगवद गीता है, आपके पास भी है भगवद गीता? हाँ, यहां पर नहीं है, घर में है? है दशी है दशी गीता के अध्ययन का यही महीना है, ऐसे गीता का पाठ तो हमें हर रोज करना चाहिए, गीता का, भागवत का। अखबार नहीं पढ़ने से हर रोज चल जाता है, लेकिन गीता भागवत पढ़ने से काफी बिगाड़ होगा। गीता भागवत पढ़ने के बाद समय मिलता है तो थोड़ा अखबार पढ़ सकते हैं। लोग कहते समय नहीं है, तो समय किस में जाता है? अखबार पढ़ने में समय जाता है। फिर तो पहले गीता भागवत को पढ़ना चाहिए, समय बचता है तो देखा जाएगा, कोई हेडलाइन थोड़ी देख सकते हैं। इस पर विचार कीजिए आप, 7 दिवस बराबर हम लोग भागवत का अध्ययन करते रहे। पिछले 2-3 दिनों में आपने कुछ किया अध्ययन, भागवत का अध्ययन किया? आप लोग आते थे भागवत कथा में? कौन कौन आते? हाथों पर करना, कौन कौन आते? अच्छा, सब आते हैं। हाँ, तो अब 3 दिन बीत गए ना, बीच में 3 दिन, तो क्या किया आपने? गीत कुछ पढ़ा, भागवत को पढ़ा, गीता भागवत का अध्ययन किया, थोड़ा थोड़ा किया? अगले साल वंस ईयर नहीं, साल में एक बार कथा नहीं, भागवत कथा कितने बार पढ़ना चाहिए? जितने बार पढ़ सकते हैं, हर रोज, यानी कि साल में जितने बार पढ़ सकते हैं, नहीं, हर रोज जितने बार पढ़ सकते हैं। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम कहिए, नित्यम, नित्यम भागवत सेवया, ये विधि है, नित्यम भागवत सेवया। आप कहीं पर लिख सकते हैं, अपने दीवार पर कहीं पर लिख सकते हैं, नित्यम भागवत से आपको याद दिलाएगा ये मंत्र, भागवत की सेवा नित्यम, हर रोज। कम से कम कुछ मनुष्य तो ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। और फिर गीता भी है, जैसे गीता को पहले पढ़ना चाहिए फिर भागवत को, ऐसा क्रम है। फिर चैतन्य चरितामृत को पढ़ना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद कहा करते थे। गीता का अध्ययन करते 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 हम लोग उनको गीता कहां पहुंचाती है? मामेकं शरणं व्रज, यहां तक भगवान की शरण लेते हम लोग, भगवान की शरण में आएंगे। तो जहां गीता समाप्त होती है, समाप्त होती नहीं है, तो भागवत का प्रारंभ कहां से? भागवत को खोलते ही वहां आपको कौन सा मंत्र मिलेगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए कैसा दोनों का संगम है। जहां गीता कहती मामेकं शरणं व्रज, तो जिसको समझ में आया गीता का सार निष्कर्ष, मामेकं शरणं व्रज, तो व्यक्ति फिर भागवत जब लेता है तो तुरंत ही क्या करता है? हाँ, शरण लिया है उसने, माम एकम। वो एकम कौन है? वासुदेव सर्वम इति, इसीलिए क्या करता है? प्रणाम करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, हे वासुदेव। कैसे वासुदेव? ओम नमो भगवते वासुदेवा, भगवान वासुदेव को वसुदेव के पुत्र, वसुदेव भगवान नहीं है, वासुदेव भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपको नमस्कार। हे वसुदेव, वसुदेव नंदन, नंद नंदन श्री कृष्ण वासुदेव, आपको नमस्कार। गीता एक ही ग्रंथ है, मतलब भागवतम भी एक ही ग्रंथ है, लेकिन इसके कई कई भाग है, वॉल्यूम्स है। इसमें 700 श्लोक है, गीता में कितने श्लोक? 700 श्लोक, केवल 7 श्लोक, 18 अध्याय तो है, इसमें स्कंद नहीं है। श्रीमद् भागवत में स्कंद है, अध्याय है, फिर श्लोक है हर अध्याय में। तो 18 अध्याय वाली ये गीता में 700 श्लोक है, तो श्रीमद् भागवत में द्वादश स्कंद है, 12 स्कंद है, और अध्याय कितने हैं? 335 अध्याय है भागवतम में, और श्लोक कितने हैं? 18,000। ये भगवद गीता कहने में कुछ 45 मिनट में, ये कहां 45 मिनट में भगवद गीता, ये संभाषण घंटे भर में समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत कथा कितना समय के लिए चल रही थी? 7 दिवस, केवल 7 रात्रि को भी। कुरुक्षेत्र में भगवद गीता को सुनाए भगवान, वहां आप जा सकते हो, आज भी जा सकते हो। वह ज्योतिसर नाम का स्थान है, हमको जाने का वहां सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कई बार हम गए हैं। तो वह ज्योतिसर नाम का स्थान है जहां भगवान का रथ खड़ा था, अर्जुन का रथ, क्योंकि रथ के मालिक तो भगवान नहीं थे, भगवान तो केवल रथ को हाक ही रहे थे, ड्राइवर थे। और बॉस कौन? अर्जुन बॉस, बॉस पीछे बैठता है ना, कम से कम भारत में, विदेश में ऐसा नहीं होता है, विदेश में ऐसे बॉस आगे ही बैठते हैं, लेकिन हमारे देश के जो बॉसेस है, ड्राइवर चला रहा आगे गाड़ी और पीछे बॉस अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ सो रहे हैं। तो जो रथ भगवान चला रहे थे, उसके जो बॉस स्वामी महति शंदने स्थितौ स्वैतैर हयैर युक्ते महति शंदने स्थितौ, एक महान रथ में बैठ के, जिस रथ के घोड़े सफेद रंग के थे, जिसमें बैठे थे पांडव और माधव, पांडव मतलब अर्जुन, माधव कृष्ण, और उन्होंने वहां पर शंखो दधमो प्रदधमतु, दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। देवदत्त को बजाया, दैट करेक्ट, पांचजन्य ऋषि केशो देवदत्त धनंजय, पांचजन्य नाम के शंख को भगवान श्री कृष्ण बजाया। उनके शंख का नाम क्या है? पांचजन्य, जो उनको समुद्र में मिला था। और देवदत्त नाम का शंख धनंजय मतलब अर्जुन ने बजाया। इसी प्रकार सभी के शंखों के नाम भी दिए हैं। पौंड्रम, पौंड्रम नाम का शंख बजाए भीम, अनंत विजय, मणि पुष्पक, पांचों पांडवों के अलग अलग जो शंख, उनके नाम भी दिए हैं भगवद गीता में। तो हुआ, तो फिर भगवान को आदेश दिया अर्जुन ने, कहा अर्जुन पार्थ के सारथी रहे, पार्थ के सारथी भगवान थे, इसलिए भगवान का एक नाम है पार्थ सारथी। और श्रील प्रभुपाद कुरुक्षेत्र से दूर नहीं है जो देहली, वहां जब मूर्तियों की स्थापना की तो वहां के भगवान को उन्हें नाम दिया राधा पार्थ सारथी, राधा पार्थ सारथी। तो रथ जहां पर खड़ा था, और सब अर्जुन ने कहा था कि मेरे रथ को कहां खड़ा करना है ये बताएं, अर्जुन बताए सेनयोर उभयोर मध्य, जैसे या बीच का जो स्थान है, एक सेना ये हो गई पुरुषों की, एक माताओं की, एक मातृ सेना, और मध्य तो दो सेना थी, कौरवों की सेना थी और पांडवों की सेना थी, इतनी इतनी करीब सेना खड़ी नहीं थी, अब तो बहुत दूर था सेना, दूर दूर। तो अर्जुन ने कहा का मेरे रथ को सेनयोर उभयोर, उभय मतलब दोनों, उभयोर मध्य रथम स्थापय, मेरे रथ को दोनों सेना के मध्य में खड़े करो। और भगवान ने वैसे हाँ यस सर, आपका जैसा भी आदेश हुजूर वैसे ही करूंगा मैं। तो भगवान ने किया थोड़ा आगे रथ को आगे बढ़ाया और दोनों सेना के मध्य में खड़ा किया, पश्य देखो देखो समवेतान कुरुन पश्य। और भगवान ने कहा इतना ही, पहले गीता के पहले अध्याय में भगवान ने इतना ही कहा है और भगवान बोले नहीं। पहला अध्याय तो लगभग अर्जुन गीता ही है, अर्जुन का ही गीता है, अर्जुन ही बकते रहे बड़बड़ बोलते रहे, लेकिन भगवान ने कहा पश्य एतान समवेतान कुरुन, इतना कहा देखो देखो तुम देखना चाहते थे ना किनके साथ तुम्हें युद्ध करना है, तो देखो पश्य एतान समवेतान कुरुन पश्य, यहां एकत्रित हुए कौरवों को देखो। तो ये जो शब्द थे भगवान के, इसने कुछ जादू की अर्जुन के विचारों में, कुरुन पश्य, मतलब भगवान का कहने का तात्पर्य यह था कि हे अर्जुन वैसे तुम भी कुरु हो, तुम पांच पांडव भी वैसे कुरु ही हो, तुम भी कुरु नंदन हो, ये कुरु राजा हुए थे कुरु, इसीलिए उस युद्ध भूमि का नाम कुरुक्षेत्र था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र पहले का ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान था, कुरु ने वहां खेती की थी इस एक प्रकार खेती, तो कुरु राजा का क्षेत्र था कुरुक्षेत्र। तो पांच पांडव और ये सारे के सारे धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र, या दूसरे शब्द में पांडु और धृतराष्ट्र, ये दोनों के दोनों कुरु थे, तो उनके पुत्र वैसे कुरु जो थे उनका कौरव कहते हैं। तो टेक्निकली अधिक तो कहा जाता है धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव कहने की एक परिपाटी है, लेकिन वैसे पांडव भी कौरव ही है, वे भी कुरु के वंशज है। तो भगवान ने जब कहा कि देखो देखो तुम देखना चाहते, देखो तो सही ध्यान से देखो, टेलीस्कोप चाहिए दूरदर्शन, उसे देख लिया सारे जो खटे सारे के सारे कुरु है, जैसे तुम कुरु हो तो ये भी कुरु है, तुमको युद्ध तुम्हारे साथ ही, अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही करना है। ऐसा थोड़ा सा संकेत भगवान ने किया है जब भगवान ने कहा पश्चेतान समवेतान कुरुन। और ये जब भगवान के शब्द अर्जुन ने सुने तो इस संसार का श्रेष्ठ योद्धा धनुर्धर, द्रोण का ये शिष्य द्रोणाचार्य ने एकलव्य को देखा था। द्रोणाचार्य ने सोचा कि वैसे मेरे शिष्य अर्जुन से ये कौन है। एक समय द्रोणाचार्य ने देखा अपने टेंट के बगल में कुत्ते को देखा, जिस कुत्ते का सारा मुंह बाणों से भरा हुआ था लेकिन खून की एक बूंद भी नहीं टपक रही थी। तो द्रोणाचार्य ये किसका कार्य है, शायद अर्जुन भी ऐसा कार्य नहीं कर पाएगा, किसी ने इस कुत्ते का मुंह तो बाणों से भरा है एक एक बाण मार के, लेकिन ऐसा चालाकी से मुंह को बंद कर दिया है। बाद में पता लगा कि वो कुत्ता भौंक रहा था, तो एकलव्य ने सोचा कि मेरे गुरु महाराज द्रोणाचार्य को ये इस कुत्ते का भौंकना चाहे तकलीफ कुछ कष्ट कुछ ऐसा ही आवाज नॉइज पोल्यूशन, तो इस कुत्ते को भी मारना नहीं है लेकिन इसका मुंह तो बंद करना था कि भौंकना बंद कर देगा। तो एकलव्य ने क्या किया, बंद किया था मुख। तो द्रोणाचार्य ने जब देखा ये जो जिसने भी ये मुख भरा है इस कुत्ते का, ये तो मेरे शिष्य अर्जुन से श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ है। तो फिर आगे का इतिहास है, पता लगवाया कौन है। तो एकलव्य थे, ओ कौन है तुम्हारे, आप ही तो हो गुरु मेरे, मूर्ति बना के उनके समक्ष ये सीख रहा था विद्या बाण चलाने की। तो ऐसा योद्धा फिर अंगूठा मांग लिया, अंगूठा दे दक्षिणा, फिर मैं गुरु हूं, हाँ आप ही तो गुरु हो तो दक्षिणा निकालो। तो क्या मांगा, अंगूठा दे दो, कौन से हाथ का, दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। तो फिर धनुष बाण चलाने वाले को किसका अधिक उपयोग होता है, इस अंगूठे का उपयोग होता है। तो हुआ उसको गौर हिम आउट ऑफ द वे, उसको बाहर निकाला एकलव्य जो कंपटीशन कर रहा था अर्जुन के साथ। तो फिर कौन बच गया, टॉप मोस्ट आर्चर धनुर्धन अर्जुन। ऐसा अर्जुन, ऐसे अर्जुन ने क्या कहा जब भगवान के मुखारविंद से निकले हुए वचन जब उसने सुने अर्जुन ने, पश्चेतान समवेतान कुरुन। तो नेक्स्ट थिंग दूसरी बार अर्जुन फिर कहता है मुखम च परिशुष्यते, मेरा गला सूख रहा है, गांडीवम श्रंसते हस्तात, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, त्वक्च परिदह्यते शरीर जल रहा है, और न श्रेय अनुपश्यामि, मुझे इस युद्ध में कोई श्रेय कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है, न श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। स्वजन देखिए, भगवान ने कहा था देखो देखो कुरुओं के साथ तुम्हें युद्ध करना है, वही बात अर्जुन के मुख से निकली, हत्वा स्वजनम आहवे, इस भयानक युद्ध में स्वजनम आहवे, स्वजनों की हत्या करके न श्रेयो अनुपश्या, मुझे तो कोई इसमें कल्याण की बात हित की बात नहीं दिखाई दे रही है हे कृष्णा। और भी कई सारी बातें अर्जुन ने कही है, कहता ही गया अर्जुन, जिसको हमने कहा अर्जुन गीता, वही अर्जुन ही बोलते रहे पहले गीता में, पहले अध्याय में। तो हुआ जहां पर वे दोनों खड़े होके युद्ध के पहले ही प्रारंभ में ही ये संवाद हुआ इनका, उस स्थान का नाम ज्योतिसर है, ये हम बता रहे थे आपको, ज्योतिसर, ज्योति का स्रोत। तो वहां पर एक वृक्ष भी, वट वृक्ष, छोटा सा अभी छोटा ही है। तो कहते हैं कि उस जब गीता का संवाद हो रहा था कृष्ण अर्जुन का, तो उस वट वृक्ष ने भी उस संवाद संदेश सुन लिया, तो उससे वो पेड़ अमर हो गया। तो वो पेड़ 5000 वर्ष पुराना, जिसने ये संदेश, वही अमर हो गया, वही पर खड़ा है। अगर पेड़ अगर अमर हो सकता है तो क्या हम मनुष्य अमर नहीं होंगे? अगर गीता का हम अध्ययन करेंगे तो इसीलिए तो भगवान ने वो पेड़ के कल्याण के लिए थोड़े ही गीता का उपदेश सुनाया था, उस पेड़ को अमर बनाने के लिए, या केवल अर्जुन को भ्रम से मुक्त करने हेतु। अर्जुन तो भक्तों से, अर्जुन तो भक्त है, अर्जुन का भ्रमित होना भी भगवान ही उसके पीछे है। तो भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया और पहले भ्रमित किया अर्जुन को, थोड़ा बीमार किया कह सकते हैं, और फिर उसको गीता का उपदेश सुनाया और अंत में क्या हुआ, भ्रम से मुक्त हुआ। ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन प्रात्यक्षिक दिखाए भगवान, देखो देखो अर्जुन भ्रमित है ना, पहले अध्याय की जो बातें अर्जुन ने की हुई है ये सारे, कुतस्त्वाम कश्मलम इदम, भगवान ने कहा कुतस्त्वा, अरे अरे मैंने तो ऐसे कभी भी नहीं सोचा था कि तुम जैसे आर्य कुरुश्रेष्ठ कुरु नंदन कुंती नंदन इस प्रकार की भाषा बोल सकता है। जो भी उन्होंने कही हुई थी बातें भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने कही हुई बातें, अर्जुन तो समझ रहा था कितनी बढ़िया बात मैं कह रहा हूं, भगवान सुन ही रहे। अब थोड़ी देर में क्या भगवान कहेंगे, ऐसा अर्जुन सोच रहा, कहेंगे शाबाश शाबाश अर्जुन, बढ़िया बात। तो सोच रहा था कि शायद भगवान कहेंगे हाँ ठीक है मैं समझ गया, तुमको युद्ध नहीं करना है तो वैसे ही हो सही, चलो हम लोग अभी थोड़ा बैठ के नाश्ता कर लेते हैं, हाँ मैं समझ गया तुमको युद्ध नहीं करना है, अब कहेंगे तब कहेंगे, ऐसा अर्जुन सोच रहा था। मैंने भगवान बोल ही नहीं रहे थे, पता नहीं चल रहा था क्या भगवान का विचार क्या है, लेकिन भगवान ने जब भी अपने मुखारविंद से कुछ कहा दूसरे अध्याय के शुरुआत में, तो जो भी कही हुई बातें अर्जुन की जो बातें हैं उसको भगवान ने कहा कुतस्त्वा कश्मलम, और ये कचरा ऐसे दोषपूर्ण खराब विचार त्रुटिपूर्ण बातें कश्मलम इदम कहां से आ रही है, इसको तो क्या करना चाहिए, डस्टबिन में कचरा पेटी में डाल दो। कुतस्त्वा कश्मलम इदम, मतलब अर्जुन पूरा का पूरा भ्रमित, ऐसे भ्रमित अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश सुना के क्या किया, वही अर्जुन अंत में उसके मुख से विचार आए नष्टो मोहा, हा नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हुआ, गत संदेह, कोई शक कोई संदेह नहीं रहा। ये हुआ कैसे? त्वत प्रसादात मया अच्युत, हे अच्युत, अच्युत कह रहे, हे अच्युत मतलब आपका कभी पतन नहीं होता, मेरा तो अभी अभी पतन हुआ था, मैं तो गिर गया था, मेरे मन में विचार से मेरा पतन हो गया था, लेकिन हे अच्युत आपका तो कभी पतन नहीं होता है। हर शब्द का कोई कारण है, क्यों? अरे अच्युत ही क्यों कहा? नष्टो मोह गत संदेह त्वत प्रसादात मया अच्युत, आप तो अपने स्तर पर अपने स्थिति में अपने स्थान पर बने ही रहते, आप कभी नहीं गिरते, आप कभी पतित नहीं होते, लेकिन मैं गिरा हुआ था, आपके इन पवित्र वचनों ने मुझे पुनः उठा लिया, मैं पतित का पावन हो गया, त्वत प्रसादात आपके प्रसाद से ही अच्युत है कृष्ण। तो हम लोग भी जो इस संसार में है, मतलब ही भ्रमित है, तीन गुणों का प्रभाव हम सभी पर है कम अधिक मात्रा में, संदेह शक से पूर्ण है, भ्रमित है, अस्थिर है, चंचल है, भगवान से विमुख है, ऐसी कुछ स्थिति अर्जुन की हो चुकी थी। तो गीता का संदेश सुनने का फल क्या? नष्टो मोह, मोह से नष्ट, मोह नष्ट हुआ अर्जुन का। तो इस गीता में केवल अर्जुन के मोह को, एक व्यक्ति के मोह को नष्ट करने की क्षमता शक्ति नहीं है, जितने भी लोग असंख्य लोग सदा के लिए जो भी इसका श्रवण करेंगे उन सभी का मोह को नष्ट कर सकती है ये भगवत गीता। और गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, और इस गीता, गीता रूपी ये गंगा का जल, गंगा का जल इसको कहा है, गीता महात्म्य में कहा है, गीता गंगोदकम, गीता गंगोदकम, गीता ये जो ज्ञान गंगा है इसको कोई पिएगा पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा, हम लोग भगवान को प्राप्त करेंगे। सर्वो उपनिषदो गाओ, सारे जो उपनिषद है, अन्य जो शास्त्र है, उपनिषद यहां कहां है, गीता महात्म में और एक स्तुति है, उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना, सारे जो उपनिषद है वो उसकी तुलना गाय के साथ की हुई है। सारे उपनिषद क्या है, क्या है? गाय है। तो गाय है तो उसको धोने वाला भी तो चाहिए। दुग्धा गोपाल नंदना कहा, इस गाय को, शास्त्रों का, उपनिषदों का जो सार है, गीतो उपनिषद भी कहा है, गीता को भी उपनिषद कहते हैं, गीता गीतो उपनिषद, तो ये उपनिषदों का सार है। सो गाय का सार क्या होता है? दूध होता है कि नहीं? तो सारे उपनिषदों का सार है गीता। तो भगवान ने दूह के ये गीतामृत, गीतामृतम महत, गीता अमृत निकाले। तो दोग्धा गोपाल नंदनः, अगर गोपाल दूध धोने वाले दोग्धा है तो अर्जुन कौन है? अर्जुन को कहा है वत्सः, सुधीर भोक्ता, अर्जुन को वत्स कहा है, बछड़ा कहा है। सारे गाय रूपी ये जो गीता है उसको दुहने वाले हैं कन्हैया गोपाल नंदन, गोपाल नंदनः, तो गाय है, दूहने वाला भी, तो बछड़ा भी चाहिए। बछड़ा कौन है? अर्जुन बछड़ा है। लेकिन ये गाय इतना दूध देती, इतना दूध देने वाली ये गाय है, केवल अर्जुन सारा दूध नहीं पी सकता, दूध काफी बचने वाला है, महा महा प्रसाद। अर्जुन ने भी पी लिया और बचा हुआ जो दूध है सुधीर भोक्ता का है, जो बुद्धिमान लोग हैं उसका उपभोग लेंगे, उसको पिएंगे। इस गीता, गीता अमृतम महत, इस प्रकार ये गीता का अमृत, महान अमृत को बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, इसको पी लेते हैं। बाकी लोग तो जहर पीते हैं, अखबार का जहर या कथा कादंबरी का सारा विष पान करते हैं। बुद्धिमान लोग गीता का अमृत पान करते हैं, उपदेशामृत पीते हैं। तो ज्योति सर नाम के स्थान पर भगवान ने सारे संसार के लिए जो ज्योति है, प्रकाश है, ये गीता का मशाल ज्योति सारे संसार को दी है। इसी महीने में कल एकादशी हुई, तो दो सप्ताह पहले जो एकादशी हुई, जिस एकादशी का नाम था मोक्षदा एकादशी, उसी एकादशी के दिन भगवान ने इस गीता को जन्म दिया। इसलिए उस दिन को गीता जयंती दिवस भी कहते हैं, गीता जयंती। गीता का जन्म जिस दिन हुआ, सो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह संवाद जो हुआ, कुरुक्षेत्र में भगवान सुनाए। भगवान थे, तो भगवान नहीं कहा, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच। फिर भगवान गए अपने धाम लौटे, और जिस दिन भगवान अपने धाम लौटे उस दूसरे दिन से, दूसरे क्या, उसी समय से कलयुग का प्रारंभ हुआ, कलयुग की शुरुआत। फिर 30 साल बीत गए, और उस वक्त श्रीमद् भागवत की पहली कथा हुई, जिसके वक्ता थे सुखदेव गोस्वामी और श्रोता थे परीक्षित महाराज, जो अर्जुन के ही, उसी पांडव के प्रपौत्र, अभिमन्यु के पुत्र, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज। तो गीता अर्जुन ने सुनी और उसी परिवार में आगे चल के परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवत का सुना। तो हमारे धर्म के ये दो महान ग्रंथ है, गीता और भागवत, इसका अध्ययन करना हमारा परम कर्तव्य है। कोई प्रश्न है? कोई क्वेश्चंस? कुरुक्षेत्र ही धाम है, वहां से कहां जाना है? कुरुक्षेत्र धाम में भगवान का नित्य निवास है। एक भक्त कह रहे थे कि लंदन से आए थे कि लंदन में जब हम हैं, वो कह रहे थे कि जब, तो हम तो कहते कि हमें भगवान के धाम जाना है, भगवान के धाम जाना है, वी हैव टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, बैक टू होम। लेकिन जब वृंदावन में जब आए थे, अपना साक्षात्कार कह रहे थे कि उनको लग रहा था कि अब हम बैक टू होम आ गए, अभी कहीं वहां से कहीं जाने का, वृंदावन से कहां जाना है, जीना वहां मरना वहां, ठीक है पुणे में नहीं मरना चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, यमुना का तट हो, बंसी वट हो। फिर आप भी आ जाना और राधा को भी साथ ले आना। तो वृंदावन गए, कुरुक्षेत्र गए, तो वह मर के वक्त वही रह जाता है, वृंदावन में रहता है, तो पेड़ अब वही का वही है। या पेड़ चला जाता तो कोई भगवान ने उसको वही रख दिया ताकि लोग आके थोड़ा कुछ प्रेरणा ले सकते। अब पेड़ अगर मुक्त हो सकता है, अमर हो सकता है, या लोगों कुछ सबूत भी तो दिखाओ, प्रूफ कोई है कोई अमर बनने का, तो उस पेड़ का जीवन ही, वो पेड़ ही अमर बन गया, तो ये आप लोगों के लिए ये सबूत है, प्रूफ हो गया। इसीलिए भी पेड़ वहीं पर है। और मैं भी आपको तो प्रश्नोत्तर का कोई समय मिला ही नहीं, अंतिम दिवस विचार था कुछ आपको समय देने का, सातवें वो भी नहीं हुआ। माता जी पूछ रहे हैं कि गोलोक जाने में, लौटने में, और वैकुंठ जाने में क्या भेद है। हर जीवात्मा का अपना अपना संबंध है भगवान के साथ, या भगवान के अलग अलग अवतारों के साथ भी हमारा या जीव का संबंध हो सकता है। तो गोलोक में तो गोलोक कृष्ण का अपना निज धाम है। गोलोक नामनी निज धामनी, गोलोक नाम के अपने निज धाम के नीचे और तीन स्थान बताए हैं। वे है देवी धाम, जहां पर हम लोग अभी है, देवी का धाम, दुर्गा देवी का धाम, इसका रखवाली करती है दुर्गा, दुर्गा, जहां से बाहर जाना बड़ा कठिन, दुर्गा, दुर्गम पथ। तो ये देवी धाम, फिर महेश का धाम, शिव जी का अपना धाम है, फिर हरि धाम मतलब वैकुंठ धाम है, और फिर साकेत या अयोध्या धाम है, और सबसे ऊपर गोलोक कृष्ण का धाम है। तो यहां पर जितने सारे मनुष्य हैं, सभी जीवों का भगवान के साथ संबंध है। तो जिस भगवान के साथ जिस जीव का संबंध है, वो जब मुक्त होता है जीव और भक्त बनता है, मुक्त होना एक बात और भक्त होना और भी आगे की ऊंची बात है, तो फिर अपने भगवान के, वराह भगवान या नरसिंह भगवान या राम भगवान या कृष्ण भगवान, उनके धाम में वो लौटता है। वैकुंठ में लोक है, अलग अलग लोक है, तो भगवान के जो अवतार है, नानावतारम करोत भुवनेषु, किंतु नाना नाना अवतार, भगवान के कई सारे अवतार है, तो हर एक अवतार का एक एक वैकुंठ धाम है। तो हम लोगों के संबंध है अलग अलग अवतारों से, स्वरूपेन व्यवस्थिति ही, तो अपने स्वरूप को प्राप्त करना ही अंतिम मुक्ति या भक्ति का स्तर बताया। How did Akrur know that Krishna and Balaram were supreme personalities of Godhead? Akrur ko kaise pata chala ki Krishna aur Balaram Parmeshwar the ya Bhagwan the? ऐसे कंस को छोड़ के सबको बाकी सबको पता था ही या कुछ असुरों को, क्यों कृष्ण की चर्चा तो सब जगह हुआ करती थी, टॉक ऑफ द टाउन जो हुआ। वैसे अक्रूर तो उनके परिवार के ही है, भगवान के परिवार के ही है। भगवान का मथुरा में कई सारे राजा, उनकी राजधानी थी, जो सारे कृष्ण के भक्त थे, सूरसेन और गर्गाचार्य मथुरा में रहते थे, गर्ग मुनि जो सारे यदुवंशियों के मथुरा में निवास करने वाले, सबके उग्रसेन के भी वे आचार्य थे। यदुनाम अहम आचार्य, और मेरी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली है, ऐसे उन्होंने कहा। तो वो भी खूब बातें करते थे भगवान की मथुरा भर में। और वैसे कंस ने जब आकाशवाणी सुनी आठवां पुत्र ये हत्या कर, तब से थोड़ा वो ज्यादा बदमाश हो गया। उसके पहले तो ठप कथा कीर्तन सब मथुरा में ठीक चल रहा था, और मथुरा तो भगवान के या जन्म की भूमि, और भगवान तो कई बार मथुरा में जन्मे हैं, एक बार ही नहीं। तो वृंदावन धाम जैसा महत्वपूर्ण है, तो मथुरा भी धाम है, उसमें कुछ जरूर कंस एंड कंपनी उन्होंने अपना आसुरी प्रवृत्ति को बढ़ा दिया। लेकिन वहां कई सारे कृष्ण भावना भावित राजा और कृष्ण भावना भावित प्रजा भी वहां निवास करती थी। अक्रूर तो उन्हीं के परिवार के, भगवान के परिवार के सदस्य थे। और गर्ग मुनि खूब प्रचार किया करते थे भगवान कृष्ण बलराम कौन है। नारद मुनि भी आया करते थे मथुरा, तो सभी लोगों ने भगवान को देखा, कृष्ण बलराम को देखा नहीं था, लेकिन कृष्ण बलराम की चर्चा तो सब जगह हुआ करती थी। जो जो लोग वृंदावन जाते हैं वहां से लौटते हैं मथुरा, या फिर मथुरा में चर्चा करते हैं, कृष्ण बलराम की खूब चर्चा होती। जो यज्ञ पत्नियां बताई, कुछ कर्मकांडी पुरोहित थे, यज्ञ खूब किया करते थे, कृष्ण बलराम के मित्रों को लगी भूख, तो भगवान ने कहा यज्ञ हो रहा है तो वहां से कुछ मांग के ला सकते हो। तो कृष्ण बलराम के मित्र तो गए, हम कृष्ण बलराम पास में ही है, उनको भूख लगी है, उनका नाम, उनको भूख तो बच्चों को बालकों को लगी थी, लेकिन उनका नाम ले रहे तो उनके नाम से शायद, उनके नाम से कौन देगा, लेकिन कृष्ण बलराम के नाम से तो जरूर देंगे कुछ सामग्री जो यज्ञ की है। यज्ञपति तो कृष्ण बलराम है। तो उन्होंने खूब प्रणाम किया उन ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, और खूब मांग की, लेकिन उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया, अपना स्वाहा, कृष्ण बलराम भूखे, स्वाहा, भूख लगी, स्वाहा, हुआ स्वाहा। ये मित्र तो खूब कुछ निवेदन करते रहे, ये करते रहे, भूख सुबह से भूखे हैं, ऐसा है वैसा है, इनका स्वाहा स्वाहा चलता रहा। तो फिर तो बालक लौट के आए घर, घर नहीं, कृष्ण बलराम जहां वन में थे, एक अशोक वाटिका में थे यमुना के तट पर। तो भगवान को ठीक है आप उनके धर्म पत्नियों के पास जाओ, वही जो पुरोहित है उनकी जो पत्नियां हैं उनके पास जाओ। तो उनके पास जब गए तो वो फटाफट तैयार हो गई, भगवान उनको भूख लग गया, तो उन्होंने सारी टोकरियां भर दी सारा छप्पन भोग से। हाँ दीजिए हमें, हमें टोकरी, नहीं नहीं हम स्वयं ले जाएगी, हम स्वयं ले जाएगी, केवल रास्ता दिखा दो, बता दो किस वन में है, कहां पर है, क्या हुआ, इतना जो भगवान के प्रति जो प्रेम इन धर्म पत्नियों का, तो उस अध्याय में ये हम समझते हैं कि इन पत्नियों ने, पुरोहितों की जो धर्म पत्नियां थी, उन्होंने केवल भगवान से सुना था, भगवान के संबंध में खूब सुना करती थी, या वहां पर कोई फल बेचने के लिए गया, गई फल वाली गई, फिर लौट के आती है तो क्या कहती, कृष्ण की सारी कथा सुनाया करती थी, हे आओ आओ आओ, सारी स्त्रियां बैठती है, जैसे वो फल वाली थी ना, फल ले ओ, फल लो, फल लो, ताजे मीठे फल लो, तो उसने जो देखा था कन्हैया को जो फल देते समय, देख ही रही थी, देख रही ऐसी निहार रही थी कन्हैया को, उस यशोदा के लाडले का जो सौंदर्य का पान ही कर रही थी। तब जब लौट के आती घर, तो जो भी देखा, आंखों देखा वर्णन सुनाती है, तो ये सारी स्त्रियां सुनती है, या और भी कोई गया आया उनसे पूछती है, तो ऐसे सुन सुन के उनमें कृष्ण प्रेम जागृत हुआ। कृष्ण कैसे हैं, का रूप कैसा है, कैसे वस्त्र पहनते हैं, उनका मेन्यू क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम है ना, और नहीं है मटनम, नहीं है पत्रम पुष्पम, ये सब रुक्मिणी बैठ के सुना करती थी। तो सुन सुन के हुआ क्या, जब विवाह का समय आया तो रुक्मिणी ने साफ शब्दों में कहा, मेरा विवाह होगा तो कृष्ण से। तो ये सारी बातें फैलती है और कृष्ण का पता चलता है, कॉमन नॉलेज हो जाता है ऐसे बातचीत से, प्रचार प्रसार से। तो अक्रूर को कृष्ण बलराम कौन है इसका पता ऐसे भी लग सकता था, लगा होगा, वैसे रिश्तेदार परिवार के ही तो एक सदस्य थे, कृष्ण बलराम के परिवार के ही थे अक्रूर, अंकल इसीलिए कहा है ना, अंकल चाचा, ऐसा परिवार के संबंधी ही थे। तो कृष्ण का पता लगवाना है तो क्या करना है, क्या करना चाहिए, दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है चलो, पहले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, और क्या कर सकते हैं, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय, तुम्हारा भगवान से रिश्ता नाता है, घनिष्ठ संबंध है, और किसी से भी हमारा इतना घनिष्ठ संबंध नहीं है जितना कृष्ण से भी है, मां से भी नहीं और बाप से भी नहीं और बहन से भी नहीं और पड़ोसी से भी नहीं, मित्र से भी नहीं, जितना घनिष्ठ संबंध हमारा उतना उससे अधिक घनिष्ठ संबंध हमारा कृष्ण से है। तो जैसे भी हम सुनते हैं, लेकिन सुननी चाहिए जैसी बातें हैं एज इट इज बातें सुननी चाहिए, उठपटांग बात या मनोधर्म की बात नहीं, फिर उससे प्रेम नहीं जगेगा, पता ही नहीं चलेगा, फिर कोई सुनाएगा आपको भगवान का कोई रूप ही नहीं है, निराकार है, ये है वो है फलाना, या आप ही भगवान हो, हो गया फिर आगे से आगे बढ़ना ही नहीं है। लेकिन सब बातें यथारूप तत्वतः, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, भगवान कह रहे। आज का ये श्लोक है, आज इस पर प्रवचन देना था मुझे, लेकिन हम लोग वहां तक पहुंचे भी नहीं, ये तो प्रास्ताविक हो रहा है, ये तो इंट्रोडक्शन, फिर अभी प्रवचन होगा, जब आपको भूख लग गई तो अब प्रवचन का समय आएगा, ठीक है, प्रवचन नहीं सुनाएंगे, घबराना नहीं, हम लोग बंद कर देते। तो हुआ, तो इस श्लोक में भगवान ने कहा, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्वतः जानता है, उसी को मैं प्राप्त होता हूं। तो हजारों लोग हैं भगवान की तलाश में या किसी प्रकार की सिद्धि की खोज में है, ऐसे सिद्धों में भी कोई एक भगवान को समझता है, तत्वतः समझता है। तो भगवान का तत्व सिद्धांत को अगर हम सुनेंगे, भक्तों से सुनेंगे, वैष्णवों से सुनेंगे, परंपरा में सुनेंगे, तो हमारे आत्मा का जो प्रेम है भगवान के श्री चरणों में, शाश्वत प्रेम, वो जागृत होगा। कोई प्रेम कोई उधार या कोई खरीदना नहीं होता इस प्रेम को, प्रेम स्वाभाविक है हमारा भगवान के प्रति। अभी बच्चा छोटा बैठ ही रहा है, फिर खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ता है, तो जो बैठा हुआ है उसमें फिर उठ के खड़े होने की, फिर चलने की, फिर आगे चल के दौड़ने की जैसे क्षमता रखता है वो बालक, उसी प्रकार हम लोग भी धीरे 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 जैसे श्रवण करेंगे तो हम लोग भी दौड़ने लगेंगे भगवान की ओर, कृष्ण के लिए पागल होके जैसे गोपिया। तो इसके लिए और कुछ केवल श्रवण, अगर एक बात अगर सही है, श्रवण अगर सही है, इसीलिए हम बारम्बार वैसे याद ही दिला रहा है नित्यम भागवत सेवया। तो जितना हम लोग अधिक श्रवण करेंगे, और सही श्रवण होना चाहिए, श्रवण खूब हो रहा है लेकिन परंपरा में नहीं है, लेकिन सही है नहीं, मुझे लगता है, मेरा ख्याल, तो कुछ नहीं होगा। जन्म जन्मांतर के लिए आप इस संसार के लोगों के ख्याल और विचार सुनते जाइए, बहुनाम जन्मनाम और कई ऐसे जीवन बीत जाएंगे, लेकिन इसी जन्म में आप सुनिए भगवान की बात को सुनिए। तो ऐसी व्यवस्था प्रभुपाद करके गए हैं, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ये सारे ग्रंथ, ये सारे संडे फेस्टिवल की जो आज रविवार का उत्सव हो रहा है, आज के दिन सारे विश्व भर में इस पृथ्वी पर जितने भी इस्कॉन के मंदिर केंद्र हैं वहां पर आज, ये नहीं कि केवल पुणे में आज रविवार उत्सव हो रहा है, बंबई में भी इसी वक्त वहां बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई होगी, दिल्ली में और जहां पर भी, सोलापुर में या बीड़ में, नागपुर में, बनारस में, मायापुर में, न्यूयॉर्क में, लंदन में, हांगकांग में, मास्को, आज रविवार ये प्रभुपाद उत्सव शुरू किए ताकि लोग, रविवार को थोड़ा अवकाश का दिन है, छुट्टी का दिवस है, तो उसका सदुपयोग होगा। और कितनी सारी व्यवस्था प्रभुपाद किए हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके प्रभुपाद ने हम पर विशेष कृपा की है, उन्हीं के कृपा का, योजना का ही ये फल है कि हम लोगों को श्रवण के कई सारे अवसर प्राप्त होते हैं, भागवत कथा है या रविवारी उत्सव है या प्रातःकालीन सायंकालीन मंदिर के कार्यक्रम है, या अपने घर में जाके आप लोग आराम से गीता को पढ़ सकते हो, भागवत को पढ़ सकते हो, आप जहां भी हो आप माला तो जरूर फेर सकते हो, शर्माओ नहीं, डरो नहीं, जप करो आप लोग, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। और कोई प्रश्न? हाँ, वहां के गुरुदेव तो भगवान ही है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कुछ मिलने की संभावना भी है, जैसे हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग जब लौटेंगे तो प्रभुपाद मिलेंगे हमें वहां पर भगवान के धाम में। या भगवान मध्य में होंगे, मध्यस्थ होंगे, तो गुरु जहां भी उन्हें बना रहेगा। हम भगवान के और गुरु के भी नित्य दास है, गुरु के भी हम सदैव ऋणी है। लेकिन जरूर जाओ, मिलेंगे नहीं, नहीं आओ, गुरु नहीं मिलेंगे तो फिर हम जाएंगे नहीं। जाओ, क्या भगवान अगर चाहते हैं आपको यहां रखे तो यहां भी रहो भगवान की सेवा में। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद् भक्ति रहितु की, तो भगवान की हितु की भक्ति करनी है यहां पर वहां पर। और किसी का प्रश्न? हाँ, कोई कारागृह कहाँ है? जी हाँ, देवी धाम को कारागृह कहाँ है? जैसे कारागृह में कैद खाने में जैसे व्यक्ति को पहुंचाया जाता है तो वहां पर उसको विशेष पोशाक वर्दी पहनाते हैं, पहनाते कि नहीं कारागार में? पहले तो उसको नई वर्दी दे देते हैं तब एडमिट कराते हैं उसका। तो हम लोगों को भी यहां पर वर्दी पहनाई जाती है। जो हम एक दूसरों को देखते हैं ना, या हम अपने को आईने में देखते हैं, वो हमारा रूप नहीं है, वो हमारा ड्रेस नहीं है, तो यहां का ड्रेस है ये संसार का। तो ये भी कारागार जैसी स्थिति हो गई हमारी इस देवी धाम में। हमको वर्दी पहनाते हैं और कारागार में जैसे अरेस्ट किया जाता है तो किसे अरेस्ट होते हैं? अरेस्ट करने के लिए बंदी बनाया जाता है तो क्या होता है? रस्सी होती है, कोई डोरी होती है। तो हमको भी यहां पर, हम सभी को, कोई अपवाद नहीं है, तीन डोरियों से बंधा हुआ हम लोग बंधे हुए हैं। कौन सी डोरिया है? एक सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, तीन प्रकार के डोरियों से हमको बांधा हुआ है। और कारागार में थोड़ी लाइट कम होती है तो यहां भी वैसे अंधेरा ही है। प्रकाश होते हुए भी हमको पता ही नहीं हम लोग कौन है, कहां के हैं, अंधेरे में गोते खा रहे हैं हम लोग। कारागार में क्या दंडित किया जाता है? करते कि नहीं? खूब पिटाई होती है। इस कारागार में हमारी भी पिटाई होती है। कैसे? आदि दैविक दुख है, आदि देवताओं के कारण देवता कुछ कुपित हो जाते हैं, नाराज होते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुख है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भी मोटे मोटे दंड है। कोई मरना चाहता है? लेकिन हर एक को मरना ही पड़ता है, ये दंड है। कोई बूढ़ा होना चाहता है? हर एक को बूढ़ा होना पड़ता है। और रोग के लिए कोई प्रार्थना करता है? कब से निरोगी है हम, भगवान कुछ करो ना, कुछ एड्स वगैरह भेज दो हमारी दिशा में। तो हम लोग चाहते नहीं तो भी ये दंड हमारा पीछा, एक कष्ट हमारा पीछा करते रहते हैं। तो वह तो ये कारागार जैसे सारे अनुभव है, समझ रहे ना? और भी बताया जा सकता है कि कारागार जो एरवड़े क्या था पुणे में जो है, हा एरवड़ा, और हमारे गांव का नाम अरवड़े तो कभी कभी तो वह हम बंदी वहां अरवड़े में बने थे, तो प्रभुपाद के कारण कुछ मुक्त हो गए। तो यहां पर ये एरवड़े में जो कारागार है उसकी तुलना ये ब्रह्मांड एक कारागार कैसा है। हम लोग कई साम्य है, सिमिलैरिटीज दोनों में। तो वहां भी सुपरिटेंडेंट है, कारागार के सुपरिटेंडेंट होते हैं। तो उसी प्रकार यहां के भी दुर्गा देवी, ये सारे देवता, ये सुप्रिटेंडेंट है। तो ये जो अलग अलग देवता है, तो फिर जो कैदी होते हैं, सरकार तो चाहती है कि वैसे कैद में जो नागरिक है वो मुक्त होके स्वतंत्र अच्छे सभ्य नागरिक बने, ऐसा प्रयास रहता है सरकार का, होता है कि नहीं। इसलिए कई सारे रिफॉर्म्स, सुधार के कई कार्य होते हैं। कभी कभी स्वयं भी जाते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स जाते हैं वहां के लोगों को बताने के लिए, कैदियों को, कि आप अच्छे भले व्यक्ति बनो तो फिर आप भी स्वतंत्र हो सकते हो, कारागार से मुक्त हो सकते हो। उसी प्रकार इस कारागार में, ब्रह्मांड में भगवान स्वयं आते हैं। मयाध्यक्षेन प्रकृति, जो स्वयं अध्यक्ष है इस ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड के स्वामी है वो, तो कृष्ण स्वयं आते हैं यहां पर और यहां के लोगों को जो गीता का उपदेश सुनाया, जैसे कई खाने में कोई मंत्री कई प्रकार से बता सकते हैं, बताते हैं कैसे आपको यहां नहीं होना चाहिए, आपको बाहर होना चाहिए, कैद से मुक्त होना चाहिए, हो भी सकते हो, आपको सदा के लिए थोड़े ही रखा यहां के लिए यहां पर, तो भगवान भी आते और बता देने, तुम यहां के थोड़े ही हो, तुम तो मेरे धाम के हो, मेरे हो, ममई वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, तो चलो यहां से हम लोग जाते हैं। मन मना भो मद भक्ता मद्याजी माम नमस्करु मामेव मामेव एष सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे, माम एव एष्यसि सत्यम, मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे धाम में लौट सकते हो। प्रतिजाने, प्रतिज्ञा करके मैं कहता हूं, क्योंकि तुम सभी मुझे बहुत प्रिय हो। प्रियोसि, प्रियः असि, तुम सारे प्रिय हो। वहां तो अर्जुन को कह रहे, लेकिन भगवान केवल अर्जुन थोड़े ही भगवान को प्रिय है, अर्जुन के प्रति कुछ विशेष प्रियता हो सकती है, अधिक प्रिय हो सकते हैं, लेकिन अन्य सभी जीव भगवान को प्रिय है। तो कारागार में जैसे कई सारे हम लोग बता रहे, तो इस ब्रह्मांड रूपी कारागार में भी कार्यकलाप होते हैं, भगवान स्वयं आते हैं, हमको बुलाते हैं। क्लेश से कैसे बचे, तो कोई सोच सकता है कि आध्यात्मिकता से तो क्लेश प्राप्त नहीं होना चाहिए, तो ये प्रश्न कैसा, आध्यात्मिक क्लेश से कैसे बचे, प्रश्न के ऊपर प्रश्न हो गया। जब प्रश्न पूछा गया तो वो दूसरा प्रश्न खड़ा कर देता है, आध्यात्मिक क्लेश होता क्या है। तो क्लेश तीन प्रकार के होते हैं, अभी कुछ मिनट पहले हमने कहा, तो उसमें से आध्यात्मिक क्लेश मतलब हमारा शरीर और मन जो हमको कष्ट देता है, हमारा शरीर और मन जो कष्ट देता है हम सभी को, उसको कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। वैसे आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिकता जो है, कृष्ण भावना, उससे कोई क्लेश नहीं है, लेकिन हम हमारे मन को शरीर को भगवान ऐसे बनाए हैं, ये प्रकृति ऐसी है मन और शरीर की जो हमको बहुत कष्ट देती रहती है, तो उससे कैसे बचे। तो वैसे हम लोग आध्यात्मिक अगर बनते हैं, हम अगर आध्यात्मिक बनते, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण कॉन्शियस बनते हैं, तो सभी क्लेशों से हम मुक्त होंगे। उसमें आध्यात्मिक क्लेश भी आ गए, आध्यात्मिक क्लेशों से भी हम मुक्त होंगे कृष्ण भावना भावित बनने से। तो आध्यात्मिक क्लेश से कैसे बचे, तो अध्यात्म में शरीर, अध्यात्म सेल्फ, सेल्फ या द सेल्फ, शरीर भी हमारा एक आत्मा है अध्यात्म, और मन भी है, और फिर आत्मा भी है। तो उसी की तैयारी तो हम लोग कर रहे हैं, ये कृष्ण भावना हमें ऐसी मदद करती है जिसके कारण हमको कष्ट होता है, जिस शरीर के कारण कष्ट होता है। हमारे सारे कष्ट की शुरुआत तो शरीर के जन्म या प्राप्ति से ही होती है। संसार के सारे जो कष्ट है, अगर हम जन्म ही नहीं लेंगे तो शरीर ही प्राप्त नहीं होगा तो होगा कष्ट। फिर कष्ट का कारण ही नहीं रहा, शरीरम व्याधि मंदिरम कहां है। तो जन्म होगा तभी तो मृत्यु होगी, जन्म होगा नहीं तो मृत्यु होगी नहीं। जन्म नहीं है, शरीर नहीं है, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर तो व्याधि का मंदिर है। जैसे इस मंदिर में राधा कुंज बिहारी की स्थापना हुई है, तो उसी प्रकार इस शरीर में भगवान ने व्याधि की स्थापना की है। व्याधि तो शरीर मतलब व्याधि होगी, और शरीर में जो रोग है उसको व्याधि कहा है, तो मन के जो रोग है उसको आधि कहा है। दो प्रकार के रोग है, आधि और व्याधि। आधि मन में होती है, व्याधि शरीर में होती, दोनों भी रोग है। और वैसे शरीर में कोई चोट पहुंचती है तो वैसे एक दो सप्ताह में उस मलम पट्टी करा के और जख्म ठीक हो जाती है, लेकिन किसी ने मन में चोट लगाई है तो कभी कभी जीवन भर वो वेदना होती है, कष्ट होता है। ऐसा मन को भी बनाया है। तो मन को जितना हम लोग शुद्ध करेंगे, वैसे ही हम लोग शरीर और मन के कष्टों से मुक्त होंगे, या हम लोग कृष्ण भावना भावित होने से शरीर में कष्ट या मन में कष्ट होते हुए भी तांस तितिक्ष्व भारत, तितिक्षस्व भारत। भगवान का एडवाइस, सलाह ये है कि ये संसार में सुख और दुख आते ही रहेंगे। मात्रा स्पर्श सुकौंतेय शीतोष्ण शीत उष्ण सुख दुखदा। तो इस संसार में जैसे अलग अलग ऋतु आते हैं, कभी ग्रीष्म ऋतु आता है तो कभी जाड़े के दिन भी आते हैं, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी दो प्रकार के सीजन आते रहते हैं। और एक सीजन का नाम है सुख का सीजन और दूसरा दुख का सीजन। कभी कभी कई महीनों तक सुख चलता रहता है और कभी तक फिर सालों तक दुख रहता है। कभी 5 मिनट के लिए सुख, 3 मिनट के लिए दुख, 10 मिनट के लिए सुख, 15 मिनट के लिए दुख, ऐसे यार। ये सीजन का कुछ भरोसा नहीं है, ये आया हुआ सीजन अब कब तक रहेगा कुछ पता नहीं। किसी के जीवन में इस सुख का सीजन लंबा होता है, किसी के जीवन में दुख का सीजन। तो भगवान की सलाह है, इस दोनों को टॉलरेट करो, दोनों को बर्दाश्त करो। और ये इसीलिए गीता पढ़नी होगी, गीता का दूसरा अध्याय पढ़ोगे, भागवत पढ़ना होगा, पर इससे फिर हमको जीने की राह, जीने की कला कहिए, आर्ट ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग जो है, ये गीता भागवत में समझाया है, ताकि हम कुछ बातें टाल भी सकते हैं, सह भी सकते हैं। या अगर हमारा लिविंग वगैरह सिंपल वगैरह है तो कम बीमारी होगी, और इस प्रकार कुछ को कम भी कर सकते, टाल भी सकते हैं, लेकिन कुछ तो बना रहेगा ही। तो हमारा खान पान, रहन सहन, हमारा आना जाना, लिखना पढ़ना, जो भी ऐसे नाम, सूची लंबी हो सकती है, वो अगर सही है, उचित है, तो कई सारे शरीर और मन में होने वाले कष्टों को हम कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हम भगवान के जब भक्त बनेंगे तो हमारा गर्दन कटने के बजाय क्या होगा, हाथ ही कट जाएगा, फिर हाथ कटने के बजाय कुछ उंगली कट जाएगी, मतलब बहुत सारे हमारे दुख कम होंगे। लेकिन शरीर है इसीलिए कुछ तो बना ही रहेगा, या मन है। लेकिन कृष्ण भावना भावित होने से हमें ऐसी क्षमता आएगी, हम ऐसे इक्विप्ड होंगे, ज्ञान से युक्त होंगे कि हम समझ पाएंगे कि कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे इसको संभालना है, कैसे इससे बचना है। या इस ज्ञान के साथ जब हमारी देहात्म बुद्धि कम होगी, देहात्म बुद्धि कुण पेयी त्रिधातु के तीन धातु का कफ पित्त वायु का बना हुआ जो शरीर है, जिसको हम आत्मा हम स्वयं समझ, देहात्म बुद्धि देह को ही हम आत्मा समझते हैं, तो ये देहात्म बुद्धि कम होने से शरीर को होने वाले कष्टों की ओर हमारा कम ध्यान होगा। हम समझा ये तो शरीर को कष्ट हो रहा है, वो ईसाई मसीह को तो सूली पर कहते क्रॉस, सूली पर चढ़ाया, कीले ठोके गए और उनका शरीर सारा खून से लथपथ हो चुका था, तो भी उनका सोचना था काम एंड क्वाइट, बड़ा धीरवान पुरुष से सोचता है, अनडिस्टर्ब, कोई मन में। तो वे तो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इनको क्षमा करो भगवान, इनको माफ करो। वो किसी डॉक्टर को फोन है, आओ आओ आओ, बैंडेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हमको अभी तो एडमिट करना होगा, नॉट इन जनरल वार्ड, किसमें एडमिट करना होगा, इंटेंस केयर यूनिट में ही कोई जगह है तो देखो, ससुन अस्पताल में ऐसा फोन कर नहीं थे वे, उल्टे भगवान से संपर्क करके बता रहे थे भगवान इनको माफ करो, उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनको क्षमा करो प्रभु। तो ईसाई मसीह में कोई देहात्म बुद्धि नहीं होने के कारण वो केवल आत्मा से, स्वयं को आत्मा ही मान रहे थे, तो शरीर में जो भी बिगाड़, जो भी खून खराब है उससे कोई इनका लेना देना था नहीं। किसी ने कार को ठोकर लगाए तो प्रभुपाद कहा करते हैं कि पीछे वाला व्यक्ति कहता है, पीछे वाला क्या, जिस गाड़ी को ठोकर लगा, यू हिट मी, तुमने मुझे ठोकर लगाई, ठोकर किसको लगाई, गाड़ी को लगाई, लेकिन वो गाड़ी से इतना उसका प्रेम है, वो गाड़ी के साथ ही स्वयं को आइडेंटिफाई करता है, मानो गाड़ी ही मैं हूं, इसलिए कोई पीछे ठोकर लगी, अरे तुमने मुझे ठोकर लगाई, ऐसी कॉमन लैंग्वेज है, यू हिट मी, तुमने मुझे धक्का लगाया, तुमको थोड़े धक्का लगाया, तुम्हारी गाड़ी को धक्का लगाया। तो उसी प्रकार ये शरीर एक गाड़ी है, यंत्र है, यंत्रा रूढ़ानी मायया, माया का बना हुआ ये शरीर यंत्र है, इसमें हम आरूढ़ है, आत्मा प्रवासी है, प्रवास करता है, लेकिन प्रवासी कभी कभी गाड़ी को शरीर को ही अपना मानता है, मैं मानता है। तो जितना भी हमारा देहात्म बुद्धि घटेगी उसी के साथ हमारे शरीर से मन से जो हमको कष्ट होते हैं वो कम होते जाएंगे, या उसमें उसको बर्दाश्त करने की, टॉलरेट करने की क्षमता हम में आ सकती है। तो ये कृष्ण भावना कि जो उपदेश है गीता भागवत के, इसके अध्ययन से और उसके फिर अभ्यास से ही हम लोग आध्यात्मिक क्लेशों से बच सकते हैं। हरे कृष्ण। वो तो बहाना है शाप का, भगवान चाहते थे कि ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी प्रसाद ये संसार को प्राप्त हो, नहीं तो राजा परीक्षित भी वैसे सक्षम थे, वे भी कुछ कार्रवाई कर सकते थे, जो भी शाप मिला था कुछ, लेकिन न तो भगवान ने कुछ किया न तो राजा परीक्षित ने कुछ किया, इसी का फल हम सभी को मिला और वो है श्रीमद् भागवत। इसलिए हमने कहा शाप दिया, अच्छा हुआ उनका शाप हमारे लिए वरदान बन गया। जो भगवान की एक्शन, भगवान पूर्ण है। ये जगह दंडित करते हैं ब्राह्मण को, दूसरे जगह पर कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। भगवान का कुछ ओवरऑल प्लान होता है, तो दंडित करने से भागवत कथा ही हमको प्रदान की है, तुमको आभार मानने चाहिए भगवान के और राजा परीक्षित और उस ब्राह्मण के भी। हरे कृष्ण।